ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। पुनर्निर्माण के अब तक के काम को संतोषजनक बताते हुए प्रधानमंत्री ने बाकी काम तेजी से पूरे करने का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण को किया निर्देश। प्रदेश नंबर 3 का नाम बागमती और प्रदेश की राजधानी हेटौड़ा रखने का नेकपा प्रदेश नंबर 3 के संसदीय दल का निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा 2 दिन के अंदर प्रदेश का नाम किया जाएगा घोषित। और पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण की कार्य प्रगति की प्रशंसा की है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद की हुई 5वीं बैठक में अब तक के कामों को संतोषजनक बताते हुए प्रधानमंत्री ओली ने बाकी काम भी जल्दी करने का निर्देश किया। मौके पर प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील गेवाली ने बताया कि निजी आवास निर्माण के काम 62% पूरे हो चुके हैं और आने वाले वैशाख तक में रानी पोखरी भी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि धरहरा का पुनर्निर्माण भी तेजी से हो रहा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बांसकोटा ने कहा कि नेपाली फिल्म क्षेत्र को सभी नेपाली समुदायों के मन को जोड़ने का काम करना होगा। आज काठमांडू में नेपाल चलचित्र संघ की 46वीं वार्षिक साधारण सभा का उद्घाटन करते हुए मंत्री बांसकोटा ने चलचित्र कर्मियों को सभी नेपालियों के मन जोड़ने का खुराक तैयार करने का आग्रह किया। साथ ही ये बताते हुए कि चलचित्र से संबंधित कानून भी बनने जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के सुधार और विकास का एक प्रारूप देने का भी आग्रह किया। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को सुलभ और प्रभावकारी बनाने पर ही देश में सुशासन बहाल हो सकता है। आज काठमांडू में नेपाल जन प्रशासन संघ द्वारा आयोजित सुशासन तथा विकास संबंधी अंतर्क्रिया में मंत्री त्रिपाठी ने कहा कि स्थानीय तहों को असाधारण अधिकार प्राप्त है, इसलिए जनता को प्रत्यक्ष अनुभव होने के हिसाब से सुशासन बहाल करने में स्थानीय तहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि देश में सुशासन बहाल करने के उद्देश्य से सरकार प्रणालीगत सुधार में लगी हुई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय और संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बांसकोटा को शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है। राष्ट्रपति भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर उन्हें यह कार्यभार सौंपा है। इससे पहले कानून मंत्रालय का कार्यभार प्रधानमंत्री स्वयं संभाल रहे थे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल ने कहा कि शिक्षक ही देश का गंतव्य निर्धारण कर सकते हैं। आज माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियन हिस्टान के राष्ट्रीय एकता महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए मंत्री पोखरियाल ने ये बात कही। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेमवांग ने मेची राजमार्ग और कोशी राजमार्ग को जोड़ने वाले निर्माणाधीन 100 किलोमीटर सड़क निर्माण को तीव्रता देने का निर्देश किया है। आज रांके रवि भेडेटार की निर्माणाधीन सड़क का स्थलगत अनुगमन करने के दौरान मंत्री नेमवांग ने ऐसा निर्देश किया। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नंबर 3 के संसदीय दल ने प्रदेश का नाम बागमती और राजधानी हेटौड़ा रखने का निर्णय किया है। हेटौड़ा स्थित मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल के निवास में हुई संसदीय दल की बैठक ने पार्टी सचिवालय के निर्देश के अनुसार निर्णय किया है। वहीं सचिवालय के निर्णय से असंतुष्ट सांसदों ने अपना भिन्न मत रखा है। ज्ञात हो कि अब प्रदेश सभा में राजधानी और नाम के सवाल पर मतदान होगा और चूंकि नेकपा के अपने ही सांसदों की संख्या 80 है, इसलिए प्रदेश का नाम बागमती और प्रदेश की राजधानी हेटौड़ा होना लगभग तय है। प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल ने कहा कि 2 दिनों के अंदर प्रदेश की स्थायी राजधानी का ऐलान किया जाएगा। उद्योग संघ मकवानपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पौडेल ने कहा कि हेटौड़ा को अब औपचारिक रूप में ही राजधानी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पौडेल ने कहा कि हेटौड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगाए तो प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदेश नंबर 3 अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है, बस केंद्र सरकार के जरिए हस्तांतरण होना बाकी है, इसलिए मौजूदा हालात में हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजार में नया की थाई ना। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का ऑफर सस्तो सारे सस्तो में खरीद करना पड़े मा स्टार 14-15 हैश डायल करने पड़ने रही त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
1415 1415 1415 1415 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी माघ 9 गते होने जा रहे राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया है। चुनाव में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग के सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने दी। सातों प्रदेशों महिला समूह से 7, दलित समूह से 2, विकलांग समूह से 2 और अन्य समूह से 7 समेत कुल 18 रिक्त पदों के लिए होने वाले चुनाव में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा सहित 6 राजनीतिक पार्टियों की ओर से कुल 45 लोगों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन करने के दौरान यात्रियों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने की बात पर विज्ञों ने जोर दिया है। राष्ट्रीय सभा विधायन व्यवस्थापन समिति की काठमांडू घाटी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन करने के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक के ऊपर विज्ञों की राय लेने के लिए आज सिंह दरबार में हुई बैठक में विज्ञों ने सड़कों के किनारे फुटपाथ बनाने और टिकट प्रणाली को वैज्ञानिक और व्यवस्थित करने की बात पर जोर दिया था। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और नेपाली कांग्रेस को विकृति से बचाने का अभियान शुरू हो चुका है। आज तन्हु उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित तन्हु महोत्सव का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ नेता पौडेल ने कहा कि पार्टी सुधार के अभियान की शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को कृषि, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्रों के विकास और विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। काठमांडू के सुंदरी जल में 2 पेयजल प्रशोधन केंद्र का निर्माण पूरा हुआ है। मेलमची पेयजल परियोजना अंतर्गत दैनिक 17 करोड़ लीटर पानी प्रशोधन करने के हिसाब से केंद्र का निर्माण किया गया है। ये जानकारी मेलमची पेयजल विकास समिति ने दी। जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नियोग जायका और एशियाई विकास बैंक एडीबी के आर्थिक सहयोग में प्रशोधन केंद्र का निर्माण किया गया है। ये जानकारी समिति के सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पंत ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में एक मस्जिद में हुए धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और 21 घायल हैं। क्वेटा के डीएसपी अमानुल्लाह भी इस हमले में मारे गए हैं। क्वेटा में सिविल हॉस्पिटल के एक प्रवक्ता के हवाले से बीबीसी ने बताया कि घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने धमाके की जगह को चारों ओर से घेर लिया है और सेना पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान चला रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा, पुलिस और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। जिन्होंने मस्जिद में मासूम लोगों को निशाना बनाया वो कभी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी मिसाइल के कारण यूक्रेन का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बुधवार को यूक्रेन का यात्री विमान तेहरान हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार सभी 176 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए थे। ईरान के नागरिक उड्डयन प्रमुख ने दावा किया कि वे इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि विमान मिसाइल के कारण नहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पश्चिमी देशों के कई नेताओं ने यह कहा है कि जो सबूत मिले हैं उससे यह लगता है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल विमान को जाकर लगी थी, शायद गलती से ऐसा हुआ था। अमेरिकी मीडिया ने ऐसी आशंका जताई है कि अमेरिका की संभावित जवाबी कार्रवाई के कारण शायद इस यात्री विमान को जंगी विमान समझ लिया गया। दरअसल ईरान ने अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमान की मौत का बदला लेने के लिए इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर कई मिसाइलें दागी थीं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसके बाद ईरान को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई का अंदेशा था। इस विमान दुर्घटना में ईरान के 82 लोग, कनाडा के 63, यूक्रेन के 11 लोग मारे गए थे। इनके अलावा मारे जाने वालों में स्वीडन, ब्रिटेन, अफगानिस्तान और जर्मनी के नागरिक भी थे। ईरान ने वादा किया है कि वो इस दुर्घटना की पूरी जांच करवाएगा, लेकिन टीवी फुटेज से पता चलता है कि बुलडोजर की मदद से दुर्घटना स्थल पर पड़े मलबों को हटाया जा रहा है। इस कारण यह चिंता जताई जा रही है कि जांच के महत्वपूर्ण सबूत वहां से हटाए जा रहे हैं। विमान के ब्लैक बॉक्स को अभी खोला नहीं गया है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। पुनर्निर्माण के अब तक के काम को संतोषजनक बताते हुए प्रधानमंत्री ने बाकी काम तेजी से पूरे करने का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण को किया निर्देश। प्रदेश नंबर 3 का नाम बागमती और प्रदेश की राजधानी हेटौड़ा रखने का नेकपा प्रदेश नंबर 3 के संसदीय दल का निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, 2 दिन के अंदर प्रदेश का नाम किया जाएगा घोषित। और पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।